ओम शांति। आज आप सभी लाभार्थियों के सामने परमात्मा का परिचय, ये मेरा अहो सौभाग्य है कि परमात्मा के विषय में परमात्मा का दिव्य संदेश आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा ये मानना है परमात्मा मिलन के प्राप्ति के विषय में, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में आज आपके सामने जो तथ्य रखे जाएंगे वो परमात्मा परिचय के विषय में आपकी काफी मदद करेंगे। मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूं, आप तक संदेश पहुंचाने के निमित्त हूं। सो आप सभी को मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। तो हम लोग चर्चा के विषय को और परमात्मा परिचय के विषय को आगे प्रस्तुत करते हैं। परमात्मा कौन है? संसार में परमात्मा शब्द से संभवत कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं होगा, परंतु परमात्मा के वास्तविक परिचय अथवा यथार्थ ज्ञान से सभी मनुष्य आत्माएं अभी तक अनभिज्ञ ही रही है। प्रत्येक मनुष्य अपने शारीरिक पिता के नाम को, रूप और कर्तव्य आदि को जानता है। नगरवासी अपने महापौर को यानी मेयर को, सिटी ऑफ द फादर, इनको जानते हैं, इसका बोध रखते हैं। सभी प्रांतवासी अपने राज्यपाल को यानी गवर्नर को जानते हैं, उनसे अवगत होते हैं, तथा सभी देशवासी भी अपने देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को जानते हैं। इसी प्रकार सारे विश्व के विश्व अधिकारी का अस्तित्व भी अनिवार्य है। परंतु क्या इस विश्व में रहने वाली सभी मनुष्य आत्माओं को उस विश्व अधिकारी परमपिता परमात्मा का ज्ञान है? आश्चर्य की बात है कि जीव आत्माएं अपने सभी लौकिक एवं विनाशी संबंधों को तो भलीभांति जानती हैं, परंतु अपने पारलौकिक अविनाशी परमपिता परमात्मा को पूर्णतः भूल चुकी है। इसी अज्ञानवश सर्व आत्माओं का संबंध अथवा योग ठीक प्रकार से परमात्मा से न जुटा रहने के कारण वे अपने ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति एवं शक्ति से वंचित रही है, क्योंकि ज्ञान के बिना प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अपितु जन्म जन्मांतर वेद पुराण तथा शास्त्र आदि का पठन पाठन एवं मनन चिंतन तथा जप तप तीर्थ यज्ञ हवन संध्या दान तथा पुण्य करते हुए भी दिन प्रतिदिन दुखी अशांत तथा पतित ही बन गई है। जिस प्रकार एक बल्ब का मेल अथवा योग यथार्थ रीति से बिजली घर यानी कि पावर हाउस से न होने के कारण उसमें कदाचित भी प्रकाश एवं शक्ति का संचार हो ही नहीं सकता, परमात्मा का परिचय। आज दिन तक जो भी ऋषि मुनि संत सन्यासी भगत और धर्म संस्थापक आदि होकर कर गए हैं, उन्होंने परमात्मा के गुणों की अपार महिमा की है। फिर भी परमात्मा कौन है, इसका संतोषजनक एवं सत्य ज्ञान प्राप्त न कर सके, जो कि अभी तक भी सबके लिए गुह्यतम पहेली बनी हुई है। यदि जन साधारण से पूछा जाए कि परमात्मा कौन है, तो उत्तर में यही सुनने को मिलेगा कि वह एक शक्ति है। वास्तव में शक्ति तो परमात्मा का गुण है, और गुण गुण के होते हुए गुण को धारण करने वाले गुणी का अस्तित्व न हो, यह कैसे संभव हो सकता है। जिस प्रकार सुगंध और मिठास, इस प्रकार के आदि गुण किसी भी वस्तु विशेष के होते हैं, अतः गुणों का निजी रूप नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो गुणी भी अपने निजी रूप से रहित हो। जिस प्रकार एक फूल का नाम रूप तो अवश्य होता है, परंतु उसकी सुगंध का कोई अपना निजी आकार नहीं होता। परमात्मा का रूप किसी वस्तु का रूप स्थूल आंखों से दिखाई न देता हो, ये हो सकता है, परंतु किसी का अस्तित्व हो और उसका रूप हो ही नहीं, यह बात असंभव है। इसी प्रकार परमात्मा भी अरूप नहीं है। उस दिव्य एवं अव्यक्त सत्ता का रूप अवश्य है, परंतु वह भी दिव्य एवं अव्यक्त होने के कारण दिव्य चक्षुओं से ही दिखाई देता है, उससे ही देखा जा सकता है। परमात्मा को निराकार कहने का अर्थ यह नहीं कि उसका कोई रूप ही नहीं है। वास्तव में निराकार शब्द सापेक्ष है, अर्थात अन्य आत्माओं के दैहिक रूप की तुलना में उसका प्रयोग किया जाता है। अन्य आत्माएं तो स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर धारण कर सकती है, करती है, परंतु परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। जो आत्माएं स्थूल देह धारण किए रहती है, उन्हें सूक्ष्म आकारी देवता अथवा आकारी देवता कह सकते हैं। परम आत्मा का अपना न कोई साकारी शरीर है और न ही कोई सूक्ष्म अथवा आकारी शरीर है, इसीलिए उसको निराकार कहा जाता है। अतः निराकार का अर्थ है अकाय, अव्यक्त, अशरीरी। परमात्मा रूप से न्यारे नहीं, उनका रूप न्यारा है। परमात्मा का दिव्य रूप ज्योति बिंदु अर्थात ज्योति के आकार जैसा रूप है, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। परमात्मा का नाम संसार में जितनी भी देहधारी मनुष्य आत्माएं हैं, उनका देह के आधार पर नाम रखा जाता है। वर्तमान देह धारण करने पर अर्थात वर्तमान जन्म लेने पर उनका जो नाम रखा गया है, अगले जन्म में उनका प्राय वह नाम नहीं होगा, बल्कि ब्राह्मण, माता, पिता या कोई भी महात्मा उनका कोई दूसरा नाम जन्म के बाद रख देते हैं। इसी प्रकार देह बदलने के साथ साथ मनुष्य आत्मा का नाम भी बदलता रहता है। स्पष्ट है कि सभी मनुष्य आत्माओं में सभी मनुष्यों का भी जो नाम है वो विनाशी है, अगले जन्म में नाम बदल जाएगा एवं देह पर आधारित है, नाम भी विनाशी है और विनाशी देह पर आधारित है। परंतु परमात्मा, परमात्मा तो अशरीरी है और पुनर्जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, तो उनका नाम भी अविनाशी, अपरिवर्तनीय है और दिव्य है। इसी कारण यह कहना अयथार्थ है कि परमात्मा नाम से न्यारा है। हां, यह कहा जा सकता है कि परमात्मा का नाम न्यारा है, यह कहा जा सकता है कि परमात्मा का नाम न्यारा है, परमात्मा नाम से न्यारा नहीं है, परमात्मा का परिचय, वह दिव्य नाम है शिव। शिव, शिव का अर्थ है, पहला अर्थ है कल्याणकारी, दूसरा अर्थ है बीज रूप, तीसरा अर्थ है बिंदु। क्योंकि परमात्मा सारी सृष्टि का सदगति दाता है, इसीलिए वह कल्याणकारी है। जिस प्रकार बीज किसी वृक्ष का रचयिता होता है, उसी प्रकार परमात्मा शिव भी सृष्टि रूपी वृक्ष का निमित्त कारण है। क्योंकि परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु समान है। इससे स्पष्ट है कि शिव नाम उनका बिल्कुल यथार्थ है। परमात्मा का स्मृति चिन्ह शिवलिंग सभी महान विभूतियों की स्मृति बनाए रखने के लिए उनके स्मारक चिन्ह मूर्तियां और मंदिर आदि बनाए जाते हैं। परंतु संसार में सभी मूर्तियों में अधिक पूजा संभवत शिवलिंग की ही होती है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां शिवलिंग की पूजा न हुई हो। शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी, बीज रूप, परमात्मा और लिंग का अर्थ है प्रतिमा। अतः शिवलिंग का अर्थ हुआ कल्याणकारी, परम पिता, परम आत्मा की प्रतिमा। प्राचीन काल में शिवलिंग हीरों का, जो कि प्राकृतिक रूप से प्रकाशवान होते थे, शिवलिंग हीरों का बनाए जाते थे। क्योंकि परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु रूप है। सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में सर्वप्रथम संसार के सर्व उत्तम हीरे कोहिनूर से बने शिवलिंग की स्थापना हुई थी। विभिन्न धर्मों में भी परमात्मा को इसी आकार में मान्यता दी जाती है, चाहे वो पत्थर, हीरों अथवा अन्य धातुओं की स्थायी रूप में मूर्ति स्थापित करे, फिर भी पूजा पाठ, प्रार्थना अथवा अन्य पवित्र अवसरों पर ज्योति बिंदु स्वरूप परम प्रिय परमात्मा की स्मृति के रूप में अनेक घरों अथवा धार्मिक स्थानों, मंदिरों और गुरुद्वारों आदि में दीपक अथवा ज्योति अवश्य जलाते हैं। पूजा शुरू ही दीपक से करते हैं। भारत में शिव के 12 अति प्रसिद्ध मठों को भी ज्योतिर्लिंगम मठ कहा जाता है। इनमें से हिमालय में स्थित केदारेश्वर और सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ, मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में महाकालेश्वर अति प्रसिद्ध है। भारत के बाहर निकटतम अथवा दूर जो देश है उनमें हिंदू मत से भिन्न अन्य मतों के अनुयायी लोग भी शिवलिंग की मूर्ति को बहुत सम्मान देते रहते हैं। यद्यपि आज ईसाई, मुसलमान, बौद्ध तथा दूसरे मतों के लोग शिवलिंग की उतनी और उस रीति से पूजा नहीं भी करते जैसे कि हिंदू लोग, तो भी ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिनसे वर्तमान समय में भी अनेक विभिन्न धर्म वाले लोग शिवलिंग को धार्मिक महत्व देते हैं। उदाहरण के रूप में रोम देश में ईसाई धर्म के जो रोमन कैथोलिक लोग इस अंडाकार रूप के पत्थर को आज तक भी पूजते हैं। अरब देश में मक्का नाम में मक्का जो है तीर्थ स्थान है मुसलमान लोगों का, मुसलमान यात्री आज भी इसी आकार के पत्थर को जैसे कि संगे अस्वाद या मक्केश्वर कहा जाता है जाकर कर चूमते हैं। जापान में रहने वाले बौद्ध धर्म के कई लोग जब साधना करने बैठते हैं तो अपने सम्मुख शिवलिंग जैसी एक पत्थर 3 फुट दूरी पर और उसकी 3 फुट ऊंचाई पर स्थित कर उसका ध्यान करते हैं, उसे केंद्रित कर साधना करते हैं। इज़राइल तथा यहूदियों के दूसरे देश में भी यहूदी लोग कोई शपथ लेते समय स्मरण के तौर पर एक ऐसे पत्थर को छूते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन और प्रसिद्ध देश मिस्र, इजिप्त के फानेशिया नगर में, ईरान के शहर सीरिया में, हयाती में, इस द्वीप में, सुमात्रा और जावा द्वीप आदि आदि के विभिन्न भागों में भी शिव की पार्थिव यादगार देखने में आती है। यही नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के प्रमुख शहर ग्लांसो में, तुर्किस्तान में, ताशकंद में, वेस्ट इंडीज के नगर गियाना में तथा लंका और श्यामा में, मॉरिशियस में शिवलिंग का पूजन होता है। अनेक धर्मों में मतभेद बढ़ जाने के कारण अन्य देशों में शिवलिंग की लोकप्रियता पहले के समान न भी रही हो, परंतु भारत में जहां से इसकी पूजा प्रारंभ होकर कर बाहर गई आज भी लोगों को यह अति प्रिय है। श्री रामचंद्र जी को रामेश्वर में, श्री कृष्ण जी को गोपेश्वर में तथा अन्य देवताओं को भी उन सब का परम पूज्य ईश्वर शिव को दर्शाने के लिए शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। अतः यह निस्संदेह स्वीकार करना पड़ेगा कि सारी सृष्टि की आत्माओं, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय की हो, का एकमात्र परम प्रिय परमात्मा, परम पिता ज्योति बिंदु शिव ही है। शिव के विषय में भ्रांतियां वर्तमान समय भी, यद्यपि भारत में शिवलिंग की पूजा की काफी व्यापकता है तो भी शिव के बारे में ऐसी बहुत सी अनाप शनाप कथाएं प्रचलित है जिनसे सिद्ध होता है कि लोग अपने मुख्य परम पिता परमात्मा शिव, जिसकी की यादगार लिंग रूप में है, के विषय में कुछ भी नहीं जानते। शिव के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं द्वापर और कलयुग के लेखकों की कल्पना पर ही आधारित है और अतिशयोक्ति, मिलावट तथा मनगढ़ंत वृत्तांतों से ही भरपूर नहीं बल्कि ऐसी है जिनसे कि शिव पर मिथ्या दोष आरोपित होते हैं। इस प्रसंग में शिव का पार्वती पर मोहित होना, दक्ष प्रजापति का चंद्रमा के साथ अपनी 27 कन्याओं का विवाह करना तथा उसके बाद में श्राप देना इत्यादि कहानियां किस्से और गप्पे नहीं है तो और क्या है। परमपिता शिव और उनकी रचना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के विषय में अज्ञान होने के परिणाम स्वरूप लोग मतभेद में पढ़कर इनके विषय में काम वासना से भरपूर कलंक लगाते हैं और कभी विष्णु को परमात्मा सिद्ध करने के विचार से ब्रह्मा और शंकर की ग्लानि अथवा किन्हीं दो देवताओं में युद्ध इत्यादि की दंत कथाएं प्रचलित कर देते हैं। दूसरी ओर एक और ध्यान देने योग्य बात है कि अज्ञान के कारण ही भगत लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता समझते आए हैं। शिव एवं शंकर में भेद क्या है यह आगे स्पष्ट किया जाएगा, आगे स्पष्ट हो जाएगा। बल्कि तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण कई तो शंकर को एक व्यक्ति मनुष्य मानकर शिव को शंकर का लिंग समझ कर पूजते आए हैं। खेद है भारत के लोगों की ऐसी तुच्छ अथवा क्षुधिर बुद्धि पर। परमात्मा और आत्माओं में अंतर। परमात्मा परम प्लस आत्मा शब्द ही सिद्ध करता है कि आत्माएं बहुसंख्या में है जिसमें अमुक आत्मा यानी कि परमात्मा का अस्तित्व भिन्न एवं सर्वोच्च है। जैसे कि प्रधानमंत्री ज्येष्ठ पुत्र आदि शब्दों की सार्थकता भी तभी है जबकि अन्य मंत्री भी हो जिसमें उनका स्तर अधिकार और कर्तव्य आदि प्रधान हो, अथवा अन्य पुत्र भी है जिसमें अमुक ज्येष्ठ है। बहुत लोगों की यह विचारधारा है कि आत्माएं परमात्मा का अंश है और सबको एकत्रित रूप में परमात्मा कहा जाता है। जिस प्रकार पानी की अनेक जो बूंदे हैं मिलकर कर सागर कहलाया जाता है उसी प्रकार। परंतु परम शब्द गुणवाचक है, क्वालिटी है, न कि परिणामवाचक है। जिस प्रकार किसी को जब महात्मा महान प्लस आत्मा अथवा महापुरुष महा प्लस पुरुष की उपाधि दी जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा व स्थूल शरीर की आकृति आकार और साइज में बड़ी है, परंतु दूसरों की भेंट में उसके गुण एवं कर्तव्य महान अथवा श्रेष्ठ है। जबकि आत्मा एवं परमात्मा दोनों चैतन्य सत्ताओं का अस्तित्व अनादि है और अविनाशी है तो इनके अंश होना कैसे संभव हो सकता है। हां सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान यानी वंश होने के कारण उनमें पिता के ईश्वरीय गुण की पवित्रता सुख शांति आदि का कुछ अंश पौत्रुक संपत्ति के रूप में विद्यमान हो सकता है। अतः परमात्मा और आत्माएं भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक है। आत्मा पावन होकर कर महात्मा धर्मात्मा अथवा देवात्मा यानि संपूर्ण सर्वगुण संपूर्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन सकती है, परंतु परमात्मा बन जाना अथवा अपने अस्तित्व को परमात्मा में मिला देना असंभव ही नहीं अपितु मिथ्या विचार है। परमात्मा के लिए एक वचन और आत्माओं के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है। जैसे आत्माओं महात्माओं, देवताओं आदि कहने में आता है, न कि परमात्माओं। अतः परमात्मा एक है और अन्य आत्माएं कभी स्वयं को परमात्मा नहीं कहला सकती। स्वयं को शिव मानना अथवा शिवो अहम या अहम ब्रह्मास्मि कहना महान भूल है। प्राय देखने में आता है कि शिवलिंग के साथ उसी रूप की परंतु छोटी आकृति वाले पत्थर की बहुत सी प्रतिमाएं जिन्हें शालिग्राम कहते हैं का पूजन भी होता है। जिस प्रकार शिवलिंग परमात्मा शिव का चिन्ह है, इसी प्रकार शालिग्राम विभिन्न आत्माओं के सूचक है। यूं तो सभी आत्माओं और परमात्मा के गुणों एवं संस्कारों में भिन्नता है, परंतु रूप और आकृति सबकी एक जैसी, ज्योति बिंदु समान है। केवल परमात्मा की परम सत्ता को प्रकट करने के लिए मूर्तियों में शिव का रूप शालिग्रामों से बड़ा दिखाया जाता है। आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है, अतः पुनर्जन्म लेती है, परंतु परमात्मा का सृष्टि चक्र में कल्प के अंत में केवल एक ही बार दिव्य एवं अलौकिक अवतरण, स्पष्टीकरण आगे दिव्य अवतरण का हम लोग करेंगे, एक ही बार होता है। परमात्मा एक ही समय आते हैं। आत्माएं सृष्टि चक्र के आदि में, स्टार्ट में, शुरुआत में पावन रहती है और आगे चलकर पतित बन जाती है, परंतु पतित पावन परम पिता परमात्मा सदा शिव सदा ही पावन रहते हैं। सदा शिव परमात्मा का कर्तव्य एक, परमात्मा को परमात्मा का दिव्य कर्तव्य त्रिदेव की रचना। मैं फिर से दोहराता हूं, परमात्मा का कर्तव्य एवं त्रिदेव की रचना। कर्तव्य से ही किसी की महानता महिमा प्रकट होती है। परमपिता परमात्मा शिव सारी सृष्टि का पिता होने के कारण उसका दिव्य एवं कल्याणकारी कर्तव्य भी समस्त विश्व के लिए होता है। साधारणतया किसी से यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि परमात्मा क्या करता है, तो उत्तर बहुसम्मति से यही होगा कि संसार में सब कर्म परमात्मा की शक्ति से ही होते हैं और बिना उसके हुक्म के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। यह थोड़ी गंभीरता पूर्वक विवेक से सोचने की बात है कि संसार में तो अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के कर्म होते रहते हैं। बुरे कर्मों का फल दुखदाई एवं अच्छे कर्मों का फल सुखदाई होता है। तो क्या परमात्मा भी बुरे कर्म करता है जिससे कि अन्य आत्माओं को दुख प्राप्त हो? मान लीजिए कोई आवेश में आकर किसी अन्य व्यक्ति को कोई छुरा घोंप देता है, तो क्या इस हिंसक कर्म का कर्ता भी परमात्मा को माना जाए? परमात्मा को सदा सुख कर्ता दुख हर्ता कहा जाता है, तो उसके कर्मों में कभी भी दुख विद्यमान नहीं हो सकता। यदि पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म परमात्मा ही करता है तो इसका अच्छा व बुरा फल आत्माएं क्यों भोगती है? जबकि विधान के अनुसार कहा गया है कि जो करेगा सो पावेगा और जैसा करेगा वैसा पावेगा। अतः यह स्मरण रहे कि प्रत्येक आत्मा कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, न कि परमात्मा के हाथ में वह कोई कठपुतली की तरह है। परमात्मा का नाम, रूप और गुण अन्य लौकिक मनुष्य से भिन्न है, तो उसका कर्म भी लौकिक न होकर कर अलौकिक होना चाहिए। परंतु बहुत से लोग यह समझते हैं कि संसार में फल, फूल, पेड़, पौधे इत्यादि सबको उत्पत्ति, पालना और विनाश ईश्वरी करता है। परंतु यह सब तो अनादि प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है, यह कोई परमात्मा का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य आत्मा का जन्म लेना, जीना एवं मरना भी उसके अपने कर्मों पर ही आधारित होता है। यदि किसी के घर बच्चा पैदा हो तो लोग समझते हैं यह ईश्वर ने दिया है, यदि वह कुछ दिनों बाद मर गया तो भी समझेंगे, उसका कारण रूप भी परमात्मा ही है। ईश्वर के यह परिमित एवं एक एक मनुष्य के लिए व्यक्तिगत कर्म नहीं होते, उसके कर्म तो समस्त समविष्ट गत एवं अपरिमित होते हैं। वास्तव में परमात्मा का कर्तव्य तो सारे सृष्टि चक्र में एक ही बार होता है, जब सारे संसार की दशा विकारों के कारण बिल्कुल ही दुखी तथा अशांति की चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब ही वह आकर कर पुनः उसका कल्याण एवं सदगति करता है। उसको कहा ही जाता है वह बिगड़ी को बनाने वाला अथवा पतित पावन है। इस उद्देश्य को संपन्न करने के लिए उसको तीन अलौकिक कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। पहला, ज्ञान द्वारा सत्यता, पवित्रता और शांति की स्थापना। दूसरा, असत्यता, अपवित्रता और अशांति का विनाश। तीसरा, धर्म परायण पवित्र आत्माओं का पालना तथा उनकी वृद्धि। जिस प्रकार किसी देश के राष्ट्रपति के नीचे मंत्रीगण रहते हैं, जो ही उसके आदेश से विभिन्न विभागों का कार्यभार संभालते हैं, उसी प्रकार करण करावन हार निराकार परम आत्मा शिव भी इन तीन कर्तव्यों को कराने के लिए तीन सूक्ष्म आकारी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, जिनके द्वारा क्रमश स्थापना, पालना एवं विनाश का कार्य करवाते हैं, को रचते हैं। इसीलिए परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। इसके बारे में कई प्रमाण भी मिलते हैं। पहला, शिवलिंग पर जो त्रिपुंड लगाते हैं उनकी तीन रेखाएं शिव के त्रिमूर्ति होने के सूचक है। दूसरा, शिव पर जो बेल पत्र चढ़ाते हैं उनकी तीन पत्तियां शिव के त्रिमूर्ति होने के द्योतक है। तीसरा, शिवलिंग को बहुत स्थानों पर ओंकार लिंग भी कहा जाता है। ओम शब्द में तीन अक्षर अ उ म परम आत्मा शिव के ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर द्वारा स्थापना, पालना एवं विनाश के दिव्य कर्तव्यों को तथा चंद्र बिंदु स्वयं ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव को स्पष्ट करता है। चौथा, परमात्मा को अन्य धर्मों एवं भाषाओं में जिन शब्दों से संबोधित किया जाता है वह भी प्राय तीन अक्षर ही होते हैं, जैसे कि ओम, गॉड आदि। जी ओ डी गॉड शब्द में तीन अक्षर जी ओ तथा डी भी परमात्मा के तीन कार्य स्पष्ट करते हैं, जी जनरेशन उत्पत्ति, ओ ऑपरेशन समृद्धि वृद्धि पालना, डी डिस्ट्रक्शन विनाश। पांचवी बात, वर्तमान भारत सरकार का राजनीतिक चिन्ह कोट ऑफ आर्म्स, जिसमें त्रिमूर्ति शेर भी वास्तव में तीन आकारी देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को न जानने के कारण ही बना दिया गया है। स्मरण रहे कि इन तीन आकारी देवताओं ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर का निजी अपना अपना अस्तित्व है और परमात्मा शिव जो इन तीनों का रचयिता है उनकी सत्ता इनसे भिन्न है। प्राय लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम समझते हैं, परंतु शिव और शंकर वास्तव में एक नहीं है। शंकर तो परमात्मा शिव की एक त्रिदेव रचना में से एक है। शंकर सूक्ष्म आकारी रूप वाले हैं और शिव निराकारी है। शिव कल्याणकारी परम पिता का नाम है और शंकर आकारी देवता है जो कि तमोगुणी आसुरी सृष्टि का विनाश करवाने के निमित्त है। कई चित्रों में शंकर और पार्वती को शिवलिंग के सम्मुख बैठा दिखाया गया है, जिसमें शंकर शिवलिंग की ओर संकेत करते हुए पार्वती को भी प्रेरित करते हैं कि वह अपनी योग साधना में शिव का मनन करे। इससे भी शिव एवं शंकर का भेद स्पष्ट प्रतीत होता हो जाता है। इन दो नाम का मिश्रित हो जाना इसका जो कारण है एक और भी हो सकता है कि भारतवर्ष के बहुत से प्रांतों में सौराष्ट्रों में गुजरात सिंध आदि में किसी व्यक्ति का नाम लेते समय उसके पिता का नाम भी साथ में मिश्रित रहता है, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी। इस नाम में पिता और पुत्र का नाम मिश्रित है। इसी पद्धति के अनुसार लोग प्राय शिव शंकर भोलानाथ इनका नाम भी इकट्ठा ले लेते हैं, परंतु इस बात को बिल्कुल भुला दिया गया है कि शिव और शंकर रचयिता और रचना के दो रूप में दो अलग अलग सत्ताएं हैं। अतः ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सूक्ष्म आकारी बिना हड्डी मांस के देवताएं हैं जिनको भी दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। इनको परमात्मा नहीं कह सकते अपितु इनके भी रचयिता परमात्मा ही है। इनको रचने वाले परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता परम पिता परमात्मा भगवान शिव है। परमात्मा का धाम एवं तीन लोकों का स्पष्टीकरण, परमात्मा को जहां त्रिमूर्ति तीन देवताओं का रचयिता त्रिनेत्री दिव्य बुद्धि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला त्रिकालदर्शी सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत तीनों कालों का ज्ञाता आदि कहते हैं, तो वहां त्रिलोकीनाथ अथवा त्रिभुवनेश्वर भी कहने में आता है। अतः तीनों लोकों का अस्तित्व भी अवश्य होना चाहिए। पहला तो यह मनुष्य सृष्टि अथवा स्थूल लोक जिसमें हम रहते हैं, यह आकाश वायु जल और पृथ्वी इन पांचों तत्वों की सृष्टि है, जिसे कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहां मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसा फिर भोगते भी अवश्य है। इस लोक में बसने वालों का हड्डी मांस आदि का पिंड अथवा शरीर होता है, इसी लोक में ही जन्म मरण है। अतः इस सृष्टि को विराट नाटकशाला अथवा लीलाधाम, जिसमें कि सूर्य और चांद मानो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, भी कहा जाता है। इस सृष्टि में संकल्प वचन तथा कर्म तीनों ही है। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। स्थापना विनाश और पालना आदि परम आत्मा के दिव्य कर्तव्य इसी लोक से संबंधित है। दूसरा लोक सूर्य चांद से भी पार। इस मनुष्य लोक से आकाश तत्व के भी ऊपर एक और अति सूक्ष्म अव्यक्त लोक है, जिसमें पहले सफेद रंग के प्रकाश तत्व में ब्रह्मापुरी, उसके ऊपर सुनहरे लाल गोल्डन रेड प्रकाश में चतुर्भुज विष्णु की पुरी, और इसके भी पार महादेव शंकर की पुरी है। इन तीनों देवताओं की पुरियों को मिलाकर इसे सूक्ष्म लोक कहते हैं, क्योंकि देवताओं के शरीर वस्त्र और आभूषण आदि मनुष्यों के स्थूल शरीर और वस्त्रों आदि की तरह पांच तत्वों के बने हुए नहीं होते हैं, बल्कि सूक्ष्म प्रकाश तत्व के हैं। इन देवताओं को अथवा इनके लोकों को इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि दिव्य चक्षुओं द्वारा ही इनका साक्षात्कार होता है। इन पुरियों में संकल्प तथा गति यानी मूवमेंट्स तो है, परंतु वहां वाणी अथवा ध्वनि नहीं है। यहां मुख द्वारा बोलते तो है, परंतु मनुष्य लोक में जो बोलने पर ध्वनि होती है वहां वह नहीं होती। इस लोक में मृत्यु दुखों या विकारों का नाम निशान नहीं होता। धर्मराजपुरी भी इसी सूक्ष्म लोक में ही है। तीसरा लोक देवताओं के सूक्ष्म लोक से भी ऊपर एक असीमित रूप से फैला हुआ तेज सुनहरे लाल रंग से प्रकाश है, जिसको अखंड ज्योति महातत्व अथवा ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह तत्व पांच प्राकृतिक तत्वों क्रमश पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से भी अति सूक्ष्म है, जिसका भी साक्षात्कार दिव्य चक्षुओं द्वारा ही हो सकता है। इस ब्रह्म तत्व में अंश मात्र में ज्योति बिंदु रूप त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव और सभी अन्य धर्मों की आत्माएं अपने अपने संस्थान यानी सेक्शन के आत्माओं में अव्यक्त वंशावली वृक्ष के रूप में निवास करती है। इस स्थान को ब्रह्मा लोक परलोक मुक्तिधाम शांतिधाम निर्वाण धाम मोक्ष धाम अथवा शिवपुरी कहा जाता है। इस लोक में न संकल्प है न कर्म है, अतः वहां न सुख है न दुख है, बल्कि इन दोनों से न्यारी एक न्यारी अवस्था है। इस लोक में अपवित्रता अथवा विकार बिल्कुल नहीं है। पवित्र धाम में कोई अपवित्र अथवा कर्म बंधन वाला शरीर नहीं जा सकता। यहां आत्मा भी अकर्ता अभोक्ता और निर्लिप्त अवस्था में होती है। यहां हर एक का मन लीन शांत अथवा बीज रूप अवस्था में होता है। सृष्टि लीला की अनादि तथा निश्चित योजना के अनुसार जब किसी आत्मा का सृष्टि रूपी रंग मंच पर पाठ होता है, तभी वह नीचे साकार लोक में आकर शरीर रूपी वस्त्र धारण कर अपना अभिनय यानी कि पाठ करने के लिए उपस्थित होती है। प्राय दुख अशांति के समय पर जब लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो हाथ अथवा मुख ऊपर की ओर ही उठते हैं, क्योंकि जाने अनजाने यह स्मृति मानो सभी धर्म वाली आत्माओं में समाई हुई है कि परम पिता परमात्मा ऊपर ही निवास करते हैं। परम आत्मा का निवास स्थान होने के कारण यह परम धाम नाम से भी प्रसिद्ध है। यहां पर एक भ्रांति जो दूर करने की आवश्यकता है कि प्राय लोग ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा मान बैठे हैं, जो वास्तव में परमात्मा अथवा आत्माओं का रहने का स्थान है। ब्रह्म महातत्व परमात्मा और आत्माओं के रहने का स्थान है। जिस प्रकार प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं हो सकती, ऑल द ग्लैंड्स आर इज नॉट गोल्ड, इसी प्रकार प्रकाशमान ब्रह्म ज्योति जो कि अचैतन्य तत्व है, उसे ज्योति स्वरूप चैतन्य परमात्मा मानना बहुत बड़ा भ्रम है। अतः ब्रह्म को परमात्मा मानना अथवा अहम ब्रह्मास्मि या सर्व खलोद्यम ब्रह्म तत्व, ये योग लगाने वाली आत्माएं शक्तिशाली अथवा पावन नहीं बन सकती, क्योंकि अचैतन्य वस्तु से उस चैतन्य आत्माओं को शक्ति मिल भी क्या सकती थी। शिवरात्रि अथवा परमात्मा का दिव्य जन्म, शिव अर्थात कल्याणकारी नाम परमात्मा का इसीलिए है क्योंकि वह धर्म ग्लानी के समय जब मनुष्य आत्माएं माया यानी पांच विकारों के कारण दुखी अशांत पतित एवं भ्रष्टाचारी बन जाती है, तो उनको पुनः पावन अथवा एक रस बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य करते हैं। परमात्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं तो वह उनकी निरसंकल्प तथा निष्क्रिय माने कर्म रहित अवस्था होती है। अतः परमात्मा को भी कर्म भ्रष्ट संसार का उद्धार करने के लिए ब्रह्म लोक से नीचे उतरकर किसी साकारी शरीर का आधार लेना पड़ता है। वह किसी विशेष जीवन साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं जी, किसी विशेष जीवित साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं। परमात्मा शिव के इस अवतरण अथवा दिव्य एवं अलौकिक जन्म की पुनित स्मृति में ही शिवरात्रि अर्थात शिव जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत में ही विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भारत भूमि ही परमात्मा के जन्म तथा कर्म की पावन भूमि है। शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन मास जो कि चैत्र बंदी वर्ष का अंतिम मास होता है में आता है। उस समय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूर्ण अंधकार होता है, उसके पश्चात शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है और कुछ ही दिनों के बाद नया संवत आत्माओं के अज्ञान अंधकार विकार तथा आसुरी लक्षणों की पराकाष्ठा के अंतिम चरण का द्योतक है। इसके पश्चात आत्माओं का शुक्ल पक्ष अथवा नया कल्प प्रारंभ होता है, अर्थात अज्ञान और दुख के समय का अंत होकर पवित्र तथा सुख का समय शुरू होता है। परमात्मा शिव अवतरित होकर अपने ज्ञान योग तथा पवित्रता द्वारा आत्माओं में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करते हैं। इसी महत्व के फल स्वरूप भगत लोग शिवरात्रि पर जागरण करते हैं। शिव और शंकर में अंतर न समझने के कारण शंकर जी को मस्ताना योगी समझ स्वयं को भी कृत्रिम रूप से मस्त बनाने के लिए भांग चरस गांजा आदि का उस दिन खूब सेवन करते हैं। बेचारों को यह ज्ञान ही नहीं है कि सच्ची मस्ती तो परमात्मा शिव से प्राप्त ज्ञान अमृत प्राप्त करने से ही चढ़ती है। उस दिन प्रायः लोग उपवास अथवा व्रत करते हैं। उपवास उप माना निकट, वास यानी कि रहना का वास्तविक अर्थ ही है परमात्मा के समीप हो जाना। अतः परमात्मा से युक्त होने के लिए तो निर्विकारी बनने का अर्थात पांच विकारों को न सेवन करने का व्रत लेने की आवश्यकता है। सारांश में परमात्मा का परिचय, दिव्य नाम त्रिमूर्ति शिव, दिव्य रूप ज्योतिर्बिंदु, निवास स्थान परम धाम ब्रह्मलोक, दिव्य गुण ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर प्रेम के सागर शांति तथा आनंद के सागर, दिव्य कर्तव्य अनेक धर्म अधर्म अनेक अधर्म विनाश तथा एक सत्य धर्म की स्थापना, अवतरण का समय कलयुग के अंत और सतयुग की आदि अथवा पुरुषोत्तम संगम युग पर। संसार की सबसे बड़ी भूल है आज मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूल गए हैं। परमपिता परमात्मा को नाम और रूप से न्यारा मानने के कारण अथवा सर्वव्यापी मानने के कारण योग भ्रष्ट हो गए हैं। अतः वे पवित्रता सुख तथा शांति के ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित है। यदि मनुष्य मात्र को यह ज्ञान होता कि शिव ही परम पिता परमात्मा है और गीता ज्ञान भी उन्होंने ही दिया है तो आज यह भारत स्वर्ग की भूमि होता। इस मनुष्य सृष्टि की तुलना एक चक्र से भी की जा सकती है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। कोई भी मनुष्य आत्मा जन्म मरण से न्यारी नहीं है। यहां तक कि सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण श्री राम ने भी लौकिक जन्म लिया और शरीर के कलेवर को छोड़ा। एक परमात्मा ही इस चक्र से सदा न्यारे है, क्योंकि वह कर्मातीत है। इसीलिए एक परमात्मा ज्योति बिंदु शिव ही को मृत्युंजय अमरनाथ अथवा अकाल मूर्त कहते हैं। स्पष्ट है कि परमात्मा शिव जो कि जन्म मरण के चक्कर से न्यारे है के साथ योग लगाने से मनुष्यों को इस चक्र से मुक्ति की प्राप्ति, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि अर्थात वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हो सकती है। ओम शांति। जी जी जी, ये संक्षेप में परिचय था। आप अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, ये विद्यालय भारत के हर प्रमुख शहर में। जी हाँ जी बिल्कुल, आप आइए, हमारी शुभ भावना है आपके प्रति, आपको परमात्मा का परिचय प्राप्त हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। ओम शांति।